पहले मुख्य समाचार। झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, बाल विवाह निषेध अधिनियम को व्यक्तिगत कानूनों द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मंगलवार से रूस की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मलावी के राष्ट्रपति लेजारस अचेकबेरा के बीच द्विपक्षीय वार्ता और प्रतिनिधिमंडल की स्तर की वार्ता जारी। और डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु आज इंडोनेशिया की ग्रेगोरिया मारिस्का तुनजुंग से मुकाबला कर रही है। अब समाचार विस्तार से। झारखंड में निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज अधिसूचना जारी कर दी है। इस चरण में 13 नवंबर को 43 सीटों पर मतदान होगा। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के सहयोगी दलों के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूले की घोषणा कर दी गई है। राज्य के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा सरमा ने रांची में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि 10 सीटें आजसू पार्टी को दी गई है। जमशेदपुर पश्चिम और तमाड़ की 2 सीटें जनता दल यूनाइटेड को दी गई है। चतरा की 1 सीट चिराग पासवान के नेतृत्व वाले एलजेपी को दी गई है। निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों के लिए पहली बार ऑनलाइन नामांकन की सुविधा प्रदान की है। उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन पत्र भरकर जमानत राशि जमा कर सकते हैं। शपथ पत्र भी ऑनलाइन भरा जा सकता है। नामांकन पत्र भरने के बाद इसका प्रिंट आउट लेकर नोटरी से सत्यापित कराकर रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। झारखंड के मुख्य चुनाव अधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि नामांकन फॉर्म ऑनलाइन पोर्टल suvidha.eci.gov.in पर उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 9 सीट के उपचुनाव के लिए भी अधिसूचना जारी हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नामांकन 25 अक्टूबर तक भरे जा सकेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सरकार ने आज नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों की घोषणा कर दी है। राजभवन की विज्ञप्ति के अनुसार उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर प्रशासन में विभिन्न मंत्रियों की विभागीय जिम्मेदारियों को रूपरेखा तैयार की है। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी लोक निर्माण, उद्योग और वाणिज्य, खनन, श्रम और रोजगार तथा कौशल विकास के प्रभारी होंगे। सकीना मसूद ईटू स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा, स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा और समाज कल्याण का प्रभार संभालेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम को व्यक्तिगत कानूनों द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा है कि बाल विवाह जीवन साथी स्वयं चुनने की इच्छा का उल्लंघन करते हैं। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने देश में बाल विवाह की रोकथाम कानून के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोलवे ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इस महीने की 22 तारीख से रूस की 2 दिवसीय यात्रा पर होंगे। खजान में होने वाले शिखर सम्मेलन का विषय वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना है। यह सम्मेलन प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के ब्रिक्स सदस्य देशों के अपने समकक्षों और आमंत्रित नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करने की भी उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 अफ्रीकी देशों की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन लिलोंगवे में मलावी के राष्ट्रपति लेजारस चकवेरा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके बाद दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि मानवाधिकार हमेशा से भारत के नैतिक ताने बाने में शामिल रहे हैं। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री धनखड़ ने यह बात कही। उन्होंने कहा है कि संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार प्रदान करती है, जो मानव अधिकारों का सार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि गैर पारंपरिक युद्ध ने रक्षा क्षेत्र में नई चुनौतियां खड़ी कर दी है। रक्षा मंत्री ने आज नई दिल्ली में डेयर टू ड्रीम इनोवेशन कॉन्टेस्ट के पांचवें संस्करण के शुभारंभ के अवसर पर यह बात कही। नवाचार के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के बढ़ते महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज बेंगलुरु में मंत्रालय के तहत कार्यरत मीडिया इकाइयों की गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने किसानों, महिलाओं और छात्रों के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी मांगी। श्री मुरुगन ने एक सामान्य सामग्री इकाई के गठन का सुझाव भी दिया, जो पत्र सूचना कार्यालय, दूरदर्शन, आकाशवाणी और मंत्रालय की अन्य इकाइयों के साथ सामग्री साझा कर सके। उन्होंने दूरदर्शन और आकाशवाणी से महत्वपूर्ण मंदिरों में हो रही गतिविधियों को कवर करने को कहा। उन्होंने सलाह दी है कि सार्वजनिक प्रसारक को महत्वपूर्ण मुद्दों पर जानी मानी हस्तियों और वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं के विचार जानने चाहिए और ज्वलंत मुद्दों पर बहस भी आयोजित करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल नई दिल्ली में कर्मयोगी राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह एनएलडब्ल्यू का शुभारंभ करेंगे। सप्ताह के दौरान प्रत्येक कर्मयोगी कम से कम 4 घंटे की शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध होगा। यह सप्ताह व्यक्तिगत प्रतिभागियों, मंत्रालयों, विभागों और संगठनों द्वारा विभिन्न प्रकार की भागीदारी के माध्यम से सीखने के लिए समर्पित होगा। सप्ताह के दौरान प्रख्यात वक्ता अपनी विशेषज्ञता से जुड़े विषयों पर व्याख्यान देंगे। नई दिल्ली में एशिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम उत्सव इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 8वें संस्करण का आज अंतिम दिन रहा। इस महीने की 15 तारीख को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत मंडपम में इसका उद्घाटन किया था। आकाशवाणी से बातचीत में एक प्रदर्शक ने कहा है कि इस आयोजन से उन्हें ग्राहकों से बातचीत करने और विभिन्न व्यवसायों के प्रतिनिधियों से मिलने का मौका मिला। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली ITU WTSA में महिलाओं की अब तक की सबसे अधिक भागीदारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह ऐतिहासिक कार्यक्रम दूरसंचार मानकीकरण के क्षेत्र में लैंगिक विविधता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। सर्दी के मौसम से पहले दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र धुंध की चादर में ओढ़े हुए हैं। केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार आज सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक 292 पर पहुंच जाने से शहर की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई है। ऑस्ट्रेलिया में भीषण तूफान के कारण बिजली लाइनों के क्षतिग्रस्त होने से दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में हजारों लोग बिना बिजली के रह रहे हैं। कल रात यहां बिजली गिरने से 1,30,000 से अधिक घटनाएं हुई। तूफान के कारण मूसलाधार बारिश और तेज हवाएं चली। राज्य आपातकालीन सेवा ने कल रात दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में बड़े हिस्से में खराब मौसम की चेतावनी जारी की और लोगों को घर के अंदर ही रहने की सलाह दी गई। तूफान के पूर्व की तरफ विक्टोरिया राज्य की ओर बढ़ जाने से आज स्थिति बेहतर बताई जा रही है। डेनमार्क बैडमिंटन ओपन में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु आज महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में विश्व की 8वीं नंबर की खिलाड़ी इंडोनेशिया की ग्रेगोरिया मारिस्का तुंजुंग से खेल रही है। मैच भारतीय समयानुसार 4:10 पर शुरू हुआ। ISSF निशानेबाज विश्व कप के फाइनल में भारत ने कल नई दिल्ली में 4 पदकों के साथ अपना अभियान संपन्न किया। प्रतियोगिता के अंतिम दिन निशानेबाज विवान कपूर और रजत और अनंतजीत सिंह नरूका ने कांस्य पदक जीता और बेंगलुरु में भारत के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन आज न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 402 रन बनाए। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। डेनमार्क में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा बाल विवाह निषेध अधिनियम को व्यक्तिगत कानूनों द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मंगलवार से रूस की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मलावी के राष्ट्रपति लेजारस चकवेरा के बीच द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।